हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नंदगांव में एक जगह है जिसका नाम है नंद बैठक। आप में से कितने लोग गए वहां पर? वो जगह का महत्व ऐसा है कि जब कृष्ण भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं तो यशोदा माता जी को बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी ये भी फुल दिन बाहर रहेगा, दर्शन नहीं होगा। ऐसे कहते हैं कि यशोदा माता जी की आंखों से कभी आंसू सूखे ही नहीं, कॉन्स्टेंट आईज आर फिल्ड विथ लव। आंखों का जो कुआं है वो जल से भरा रहता था हमेशा, संतत धार चलती थी आंखों की प्रेम से। और वही प्रेम के जो अश्रु हैं, जब भगवान चले गए मथुरा तो नदियों की तरह बहने लगे। और उद्धव जी जब आए वृंदावन में तो वो जब नंदगांव आए और लोगों से पूछा कि इनका घर कहाँ है नंद बाबा का, तब ब्रजवासियों ने कहा ये दो नदियां बह रही ना उसके किनारे किनारे चढ़ते जाना, नंद बाबा के घर तक पहुँच जाओगे। तो वो नंद बाबा और यशोदा माई के आंसुओं की नदियां बनी हुई थी वहां पर, ऐसा उनका प्रेम था। तो जब कृष्ण भगवान निकलते थे गोचारण करने के लिए तभी ये बहुत व्याकुल होती थी और दिन भर क्या करती थी, केवल अप एंड डाउन, मतलब क्या कुछ काम करती थी फिर खिड़की में आती थी, देखती थी सूरज कितना ऊपर है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है अब तक, वाई इज नॉट कमिंग डाउन, क्योंकि सूरज ढलेगा तो लौट के आएगा ना, तो बार बार एक ही देखना है, खिड़की में जाके देखना है सूरज कितना नीचे आया है, फिर वापस कुछ काम करना है फिर जाना है, ऑल टाइम अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। फाइनली जब सूरज नीचे आता था तब इनको रहा नहीं जाता था कि हम तो पहाड़ की चोटी पर है नंदीश्वर, स्वयं शंकर भगवान वहाँ पर तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करके वहाँ पर नंदीश्वर बने हुए हैं, उनकी चोटी पर इनका महल है नंद भवन। तो कहेंगे अगर वो पहुँच जाएगा और हम लोग ऊपर रहेंगे तो उसको और टाइम लगेगा ऊपर आने के लिए, उतनी और देरी हो जाएगी उनको मिलने में, तो इसलिए हमको नीचे जाना चाहिए। तो वो सभी सखियों को गोपियों को लेकर अपनी प्लेट में दीपक मिठाइयाँ सब आरती का सामान लेकर सबको लेकर नीचे आते थे। और नीचे एक जगह है उसका नाम नंद बैठक है जो ग्राउंड लेवल पर है, वहाँ पर वो सब लोग बैठते थे इंतज़ार करते हुए, और वहाँ पर कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए गीत गाते हुए सब लोग झूमते हुए नाचते हुए गीत गाते हुए वहाँ पहुँचते थे। और वहाँ पर आकर कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों भाग के बाबा के गोद में घुसते थे, एक गोद पे कन्हैया एक कन्हैया एक जो गोद पे बलराम जी कैसे बैठे हैं, एक व्यक्ति जो दाहिने गोद में बैठा है उसका दाहिना पाए ऐसा है, जो बाएं गोद में बैठा है उसका लेफ्ट पांव ऐसा है, और दोनों पैर ऐसे क्रॉस करके बाबा के गोद में बैठे हैं। बाबा ऐसे 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 किसका सुनूं किसका सुनूं, दोनों को सुनाना है। तो ये नंद बैठक का भाव है, नंद बैठक का भाव जो है उत्कटता है, आतुरता, ईगरनेस टू सी कृष्णा, ऊपर से धैर्य नहीं है उनको, नीचे आते हैं देखने के लिए। फिर वहां पर पूरी दोनों को बोलना है, ग्वाल बालों को बोलना है आज क्या हुआ कैसे कैसे हुआ सब सुनना है। फिर थोड़ा सेटल हो गया थोड़ा मिठाई खिला दिया उनको, फिर ऊपर जाते थे, फिर ऊपर जाकर फिर स्नान कराना है, फिर वापस माखन खिलाना है, स्तनपान कराना है, फिर लोरी गाना है, फिर सुला देना है। नंद बैठक का एक भाव यह है। दूसरा भाव यह है कि नंद बैठक पे रेगुलरली सारे बड़े गोप आकर मिलते थे, वहाँ पर चर्चा करते थे क्या क्या लीला हुई और उसका क्या क्या उनके ऊपर असर हुआ, क्योंकि समस्या तो थी ना, डेली कोई राक्षस आ रहा है कोई आतंक मचा रहा है। हमारे यहाँ जब आतंक होता है आतंकवादियों का तो केवल बम फोड़ते वो लोग, है ना, लेकिन जब राक्षसों का आतंक हुआ करता था ना, फॉर एग्जाम्पल अभी अरिष्टासुर की बात सोचो, जब वो आया तभी उसका शरीर जो था कई पर्वतों के समान था, कई पर्वत, एक पर्वत नहीं कई पर्वतों के समान था, उसकी पूंछ जो है वो आकाश में बादलों को तितर बितर कर रही थी, इट वॉज मूविंग क्लाउड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इतना भयंकर उसकी पूंछ थी, उसके वो हम्प था ना हम्प, उधर वो बादल इकट्ठा होते थे, जब वो आगे चलता था तो पूंछ से उसको फेंक देता था, जब वो भाग के आ रहा था ब्रज की ओर तो उसके चार पैर, एक एक पैर जब भी पृथ्वी पर गिर रहे थे तो धरणीकंप हो रहा था, एक साथ चार चार, और कितने पैर डाले होंगे उसने, कितनी बार धरणी को भंग करके वो आया, इतना भयंकर। हम पढ़ते हैं कि भाई 7.6 रिश्टर का नेपाल में आया, फिर अफगानिस्तान में आया, तो इतना जनहानि हो गई, इतने बिल्डिंग गिर गए, वो तो कितने भूकंप एक ही बार हो रहे हैं, साथ में जो भाग के आ रहा है तो उसके नाक से जो हवा आ रही है वो एक आंधी तूफान की तरह है, तो पेड़ गिर रहे हैं, ऊपर से जो भय पैदा हो रहा है उसमें से कई गोपियों का गर्भपात हो रहा है, इस प्रकार का आतंक होता था रोज के दिन। इसलिए ब्रजवास करना आसान नहीं है, जब कृष्ण थे यहां पर ना तभी भी ये सब होता था, तभी कंस भी वही था जहां कृष्ण थे, तो ब्रजवास सब लोग यहां पर देखते हैं रास्ते में वो पत्थर को इकट्ठा करके रखते हैं ऐसे, एक बार ऐसे ही एक माता ऐसे पत्थरों को लगा रही थी, उसका भाव क्या है कि हमें भी ब्रजवास मिले, वो घर बनाते हैं उससे, एक सिंबॉलिक लाक्षणिक घर बनाते हैं और कामना करते हैं कि हमें भी यहाँ पर जन्म लेकर वास मिले। तो एक साध्वी माता जी थी, वो आ रही थी वहाँ से, वो बोलती बोलती है उसको, संकल्प तो अच्छा है आपका लेकिन रह पाओगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कष्ट है, यात्रा में तो बहुत, कार्तिक का महीना है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, भगवान आलिंगन दे रहे हैं, कभी कभी वो आलिंगन 50 डिग्री का होता है, या बोलेंगे ना मत दो मत दो आलिंगन मत दो, 50 डिग्री का मत दो, 23 डिग्री का दो, वो अच्छा रहता है। ये हमारा भाग्य है कि हमको एकदम अच्छे मौसम में, अच्छे स्थिति में, छाया में, किसी अद्भुत पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाई जा रही है, इतना आनंद आ रहा है। लेकिन इसी कथा को अगर हम मई महीने में करेंगे यहाँ बैठकर, तो शायद इसमें से 5 लोग भी नहीं बैठेंगे, नहीं यहाँ पर आएंगे नहीं पहले तो एकदम। तो ब्रज का वास बहुत कठिन है, तो रोज के नियम पर वो लोग मीटिंग करते थे और सुनते थे आज क्या हुआ, आज ये आया राक्षस उसको मारा, फिर ये करना चाहिए। ऐसे ही नंद बैठक में उन्होंने एक बार तय किया था कि नंद बैठक कई जगह पर है, गोकुल में भी है, वहाँ पर भी मिलते थे वो, तो नंद बैठक पे उन्होंने तय किया था कि अभी रोज राक्षस आ रहे हैं, अभी हमको यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। तो वृषभानु महाराज, नंद महाराज बड़े अच्छे फ्रेंड थे एक दूसरे के, उन्होंने मिलकर तय किया हमारा राज्य हम शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्टिंग का भी गोपाल चंपू में बहुत सुंदर वर्णन दिया है, वो छठिकरा में आके रुके हैं और छठिकरा में नंद बाबा का तंबू था और वृषभानु महाराज का तंबू राधा कुंड के पास था, लेकिन वर्णन ऐसे आता है कि दोनों के तंबू एक दूसरे को छूकर लगे हुए थे, इतने विशाल तंबू थे उनके, इतने विशाल शहरों जैसे तंबू थे उनके, कि यहां से छठिकरा से राधा कुंड जो है वो 28 किलोमीटर दूर है आज की तारीख में, लेकिन दोनों के तंबू एक दूसरे को सट के लगे हुए थे। फिर वहां से वो निकले हैं, फिर वहां से नंद महाराज नंदगांव आए हैं और वृषभानु महाराज बरसाने गए हैं। तब गिरिराज पर्वत को भगवान ने उठाया, फिर मीटिंग हुई शाम को, तो मीटिंग में भगवान का बड़ा गौरव किया गया, अरे नंदा हमारा बेटा कितना भाग्यवान है, पता नहीं ये ऋषि होगा कोई, नहीं नहीं कोई देवता होगा, नहीं नहीं कोई सिद्ध महात्मा होगा, कोई सिद्धि वाला ऋषि होगा जो आपके पेट में आपके घर में बालक बनकर आया है। तो कोई बोल रहा है देवता है, तो नंद बाबा ठहाका मार के हंस रहे हैं, बोले देवता लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये रोज झूठ बोलते रहते हैं। तो देवता लोग महात्मा लोग, आप बोले महात्मा है, महात्मा लोग बहुत संयमी होते हैं, बड़े इंद्रियों पर बहुत काबू रहता है उनका, ये दिन में 50 बार भूखा होके चोरी करता है, खाता है, वो यहाँ खाता है वहाँ खाता है, बार बार मांगते रहता है, कोई इंद्रियों में कोई कंट्रोल नहीं है, और जब कोई नहीं मिलता है तो जाकर फिर जो पल्ले में बच्चे सोए हैं उसके कान में पानी डालता है, उसको चिमटा निकालता है, सोते हुए बालकों को जगा देता है, रुला देता है, ये कोई महात्मा है, कोई देवता है, ऐसे उसका वर्णन करते जा रहे हैं और उसको नंद महाराज काट रहे हैं। इसका भाव क्या है कि लोग उसके ऐश्वर्य का वर्णन करते जा रहे हैं और माधुर्य भाव से नंद बाबा उसको काट रहे हैं। नंद बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी आज के, हाँ अभी आज के दिन भगवान को उन्होंने बांधा ना यशोदा मैया ने, तो यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया तो बांध के चली गई वो, अभी चुपचाप बैठना यहाँ पर, मेरे को बहुत सारे काम है, चली गई अंदर। फिर सब सखियाँ आई, उन्होंने बहुत रोए, कुछ सखियाँ अच्छा हुआ ऐसे बोल रही थी, कुछ सखियाँ रो रही थी, कुछ ग्वाल बाल अच्छा हुआ ऐसे बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पकड़े जाते थे और ये भागते थे, इसलिए बोले अच्छा हुआ तुम पकड़े गए, हम फ्री हैं। और कुछ बाल बाल रो रहे हैं, बोला हमारा हमारा साथी बंधा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन वात्सल्य से बंधा हुआ गांठ नहीं छूट रहा है सखी सखाओं से। तो बाद में बलराम जी आते हैं, बलराम जी आते हैं, बोलते हैं अरे कन्हैया मैं बांध दिया, किसने बांध दिया? तो कन्हैया रो रो के बोलता है मुझे मैया ने बांध दिया, मुझे ऐसे किया वैसे किया फिर बांध दिया। तो कोशिश करता है, उससे भी नहीं छूटती है गांठ, बोला डोंट वरी मैं जाके मैया से बात करता हूँ। तो मैया से जाके बात करते हैं, भैया तुमने किसे बांध दिया तुमको पता है? ये तो अखिल ब्रह्मांड निर्माण करता है, ये सारे सृष्टि का निर्माण करता है ये, अरे हर चराचर वस्तु इसके आदेश से हिलती है, एक पत्ता भी इसकी इच्छा के बिना हिलता नहीं है। और पता है तो मैया ऐसे अच्छा और बताओ और क्या उसका गुण क्या होगा? बोलते ये पिछले जन्म में राम था, ये पिछले जन्म में नरसिंह भगवान था, यही तो मत्स्य है, यही तो कूर्म है, यही तो वराह है, यही तो नरसिंह है, यही तो वामन है। अच्छा तो तुम कौन हो? तो मैं तो अनंत शेष हूं, मेरे हजार फन हैं, तुम जिस पर खड़ी हो वो पृथ्वी, वो वृंदावन जिस पृथ्वी पर है वो पृथ्वी मेरे बीच के फन पर है, और वैकुंठ में मैं उनको निवास करता हूँ, वो चतुर्भुज होकर मेरे पे निवास करते हैं, और क्षीर सागर में मैं उनकी सेवा करता हूँ, हर जगह पर सेवा करता हूँ, मैं बलराम हूँ, मैं उनका प्रथम लीला अवतार हूँ। अच्छा सब अवतारों को मेरे घर पे होना था। बलराम जी भाग जाते हैं, अरे सब अवतारों को मेरे घर पे होना था क्या? मतलब बलराम तो सत्य बोल रहे हैं ना, तो झूठ नहीं बोल रहे कुछ, लेकिन मैया का वात्सल्य प्रेम इतना गाढ़ा है कि उसमें ऐश्वर्य नहीं घुस रहा है, ऐश्वर्य प्रवेश नहीं कर रहा है उसके अंदर, वो तो अपने ही माँ वात्सल्य भाव में डंडा उठाती है और भाग जाता है। बलराम जी भाग के आता है, कुछ नहीं कर पाया यार मैं। तो वैसे ही नंद महाराज इनकी हर बात को काट रहे हैं, और ऐसे कहते हैं कि वो बात करते करते ना सब लोग सीट से नीचे गिर गए जमीन पे, और पेट पकड़ के गोल 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 घूम रहे रोड पे, मतलब जहां पर बैठे हुए हैं समझो मैं यहाँ बैठा हूं मैं गिर जाता हूँ जमीन पर, पेट पकड़ के हंस रहे हैं, हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं, ऐसा हंसी की फुहार चल रही है। तो गिरिराज चर उठाने की बात है ना, तो कितना महान बेटा तुम्हारा, इतना बड़ा पर्वत जो है हमको लगा था हम उठा रहे हैं, उसको दंडा दिया तो उसने हिला दिया तो पूरा सब लोग डर गए, बहुत वाकई महान है तुम्हारा पुत्र। तो नंद बाबा क्या बोलते हैं, हाँ गर्ग जी ने तो कहा था कि इसका नाम गिरिधारी होगा, आगे जाकर गिरिराज को उठाएगा। बोला क्या गर्ग, वो गर्ग मुनि कभी आए थे? अरे बाप रे, जो रहस्य की बात थी वो तो खोल दी उन्होंने। गर्ग मुनि को तो बता के भेजा था ना वसुदेव ने कि गुप्त रूप में करना, कोई गाजा वाजा मत करना उसका, प्राइवेटली करना, घर के लोगों को खाली बुलाना, बाकी किसको बुलाना नहीं, क्योंकि कंस का भय था ना उसमें, उसको सब पता था रहस्य क्या है, लेकिन बता नहीं पा रहा था वो क्या कैसे बताना है। इतना ही बताना कि गुप्त रूप में करना, बस इतना ही बताया था। तो ये सब बात गुप्त थी, जब बालकों का नामकरण विधि हुआ था तभी गुप्त रूप में, गौशाला के अंदर गुप्त रूप में किया था, केवल घर के ये लोग थे बस, कोई नहीं था उसके अंदर। तो किसी भी ब्रजवासियों को पता नहीं था कि इनका नामकरण विधि हुआ है, गर्ग मुनि जैसे महान संत लोग यहाँ संत आए हैं, यहाँ पर वसुदेव के आदेश से आए, नामकरण किया, नाम का अर्थ बताया, भविष्य बताया, सब पता नहीं था। लेकिन इस प्रसंग में इतना हंसी मजाक हो रहा है, इतना सब पेट पकड़ के हंस रहे, तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई गर्ग मुनि ने तो बता दिया था। तो कब एकदम हंसी मजाक बंद हो गया, कुछ लोग खड़े हो गए, बोले कभी आए थे वो? तो अभी फिर फंस गए, बोलना पड़ा उनको ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। अरे तुम बड़े हमको अपनी बिरादरी के कहते हो, भाई कहते हो, और हमको नहीं बुलाया तुमने, हमसे ये प्रसंग गुप्त रखा, कैसे बिरादरी के लोग हो तुम, कैसे बिरादरी के आदमी हो तुम, कैसे राजा हो तुम, और सब लोग मिलके फिर अभी एक बोल रहा है दूसरा बोल रहा है, सबको लग रहा है कि हमको भी नहीं बुलाया, आपको भी बुलाया, इनको नहीं बुलाया, सबको नहीं बुलाया, सब लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा हम सब लोग मिलकर नंद बाबा को हमारी बिरादरी से रद्द कर देते, वी विल रस्टिकेट हिम, बाहर कर देते बिरादरी के इनके। तो वृषभानु महतो उनके अच्छे मित्र थे, वो खड़े हो गए और बोले ऐसा मत करो, नंद बाबा की समस्या थी, नंद बाबा का कितना कठोर प्रसंग था वो, आप लोग नहीं समझ पाएंगे उनकी समस्या को, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि गर्ग मुनि मेरे पास भी आए थे राधा रानी को मिलने के लिए और राधा रानी का नाम देने के लिए, इसलिए मैं जानता हूँ वो कभी आए थे, क्या हुआ था, मुझे भी बुलावा नहीं था, लेकिन मैं ये सबको जानता हूँ, इसलिए आप इतना क्रोधित मत होइए सब लोग। तो इनका क्रोध इतना हाई लेवल पे था, बोले वृषभानु तू नंद का पक्ष लेता है, ऐसे भी बरी कर दो, लेट हिम ऑल्सो गेट आउट ऑफ कम्युनिटी, दोनों चले जाओ हमको नहीं चाहिए। तो तीसरा ग्रुप खड़ा हो गया, बोले ए वृषभानु बाबा को निकालने की बात मत करना, इनकी जो कन्या है ना इसकी वजह से आप लोग यहाँ आराम से रह रहे हो, इनकी कन्या बड़ी महाप्रतापी है, तो वो ब्रजवासियों ने इस प्रसंग में वो कंसनी गोपी मुटल्ली गोपी की कथा बताई, समझ में आया आपको, वो गोप बालों ने मिलकर ये कहानी बताई कैसे यहाँ पर हाउ बुलाव आए पत्थर बन गए, कैसे कम्स आया और मुटल्ली गोपी बन गया, और कैसे फिर 6 महीने कंडे लिपवाए, ये सब कहानी वो ग्रुप ने सारे ग्रुप को बताया, तब जाकर माहौल थोड़ा शांत हो गया। तो ये सब बात नंद बैठक पे होती, इससे भी कनेक्टेड थी, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी ये जो था यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, समझो अभी कृष्ण भगवान समझो अभी जटिला के घर में राधा रानी को मिल रहे हैं, हाँ उतने में को राक्षस आया तो कैसे रहेगा, गड़बड़ होगा ना, इतना उत्कट लीला चल रहा है उसमें भंग हो जाएगा ना। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर होती है, जिसको बचाए रखने के लिए यहाँ पर राधा रानी ने अपने प्रभाव से राक्षसों को दूर रखा। तो एक लीला बताता हूँ मैं कैसी लीला होती है यहाँ पर। आप जानते हैं रोज भगवान जो है वो सबका कुछ ना कुछ चोरी करते रहते हैं, है ना। अभी राधा रानी को मिलते हैं, ऐसे ही मीठी मीठी बातें करते हैं ना, ऐसे मीठी मीठी से पास पास में आके पास पास में आते, फिर कान का एक कुंडल निकाल लेंगे, यहाँ का एक मणि निकाल लेंगे, फिर हाथ का एक कुंगली अंगूठी निकाल लेंगे, फिर गले का एक हार निकाल लेंगे, ऐसे बात करते करते ऐसे कंधे में हाथ डालेंगे निकाल लेंगे, सब जेब में डालेंगे। कुछ देर बाद में जब माला का खत्म हो जाएगी, जाने का समय आएगा, और देखिए अरे ये कान का कुंडल कहाँ गया, अरे ये किधर का अलंकार कहाँ गया। तो और कभी कभी तो उसको पकड़ते थे और पकड़ के हाथ में छोड़ के उसको निकालते थे जेब में से, तो मालूम पड़ता था अरे अरे क्या ना वो ऐसा ना। अभी सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, मतलब वो चोरी करने की आदत ऐसे ना मेरे हाथों के इतनी पड़ गई कि मैं नहीं चाहता हुए भी चोरी करते रहते। आई डोंट वॉन्ट टू स्टील, परंतु मेरे हाथ है ना मेरे नियंत्रण के बाहर है, गोपियों समझो मेरी बात को, इतना बुरा मत मानना। ये ऐसे जाते हैं इधर से कुछ उठाते हैं जेब में डालते हैं, ले लो सब, तो तुम्हारा ये ले लो सब ले लो। तो ये रोज का है, रोज का झगड़ा, रोज का कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भैया पूछ रहे ये एक कुंडल कहाँ गया, ये कहाँ गया। तो परेशान हो गई गोपियाँ, क्योंकि एक बार सबक सिखाना चाहिए उसको, ऐसा सबक सिखाएंगे ना ये जो नियंत्रण के भाई इंद्रिय ना वो भी सुधर जाएंगे। तो एक दिन क्या किया उन्होंने, कृष्ण भगवान से गोपियाँ मिली, रोज का झगड़ा है ना, रोज वो बहस करना, टैक्स देना, मेरा इलाका है तुम क्यों आए इधर से, मेरे इलाके से गुजरती हो, तुम्हारा नाक गुजर रहा है नाक के लिए इतना टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हारे बाल भी गुजर रहे हैं उस पर से इतना टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हारी सुंदर आंखें भी गुजर रही है उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे 50,000, 10,000, 20,000 स्वर्ण की मुद्राओं का हर एक अवयव पे टैक्स दे रहे हैं, इमेजिन। और स्तंग कितना कर रहे हैं, ऊपर से सब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो लोग निकाल के भी दे रहे हैं, ऊपर से मटका भी तोड़ रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो आज आए तो बिना बहस के ले लो बोल रहे, ले लो ले लो। तो आकाश की ओर देख रहे हैं, अरे सूरज कहाँ होगा आज, पश्चिम में क्यों, वंडरिंग क्या हुआ आज, आज क्या ऐसा क्या मुहूर्त है कि गोपियों ने कुछ बहस नहीं किया, कुछ विरोध नहीं किया, अपने आप दे रहे हैं, क्या बात क्या है। चलो कोई बात नहीं, उसका कारण बाद में ढूंढेंगे, पहला माखन तो खा लो, मिठाई तो खा लो। तो सबको बिठाया उन्होंने बकायदा, बोले हमेशा तो दोना लाने को भेजते हैं उनको ना, दोना लेके आओ, फिर दोना में जाके उनको चोटी बांध देते हैं वगैरह वगैरह। आज तो बोलते हैं हमने घर से पत्तल लाए हैं, बैठो, अच्छे पंगत लगाते सबको, बढ़िया से अलग अलग व्यंजन बना के लाए, इतना बढ़िया बढ़िया घी का बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना के लाया है और खिला रहे खिला रहे खिला रहे। बोले पेट भर गया, अरे खाओ अभी, ये भी ये तो खाया नहीं, अरे ललिता के घर का ये मिठाई चंद्रकला खाया नहीं, अरे इसका घर का ये नहीं खाया, उसके घर का वो नहीं खाया करके पहले सीधे बैठ के खा रहे थे, फिर ऐसे हो गए। और ऐसे ही पोजीशन में 30 डिग्रीज में भी कुछ खिला रहे हैं उनको, फिर 45 हो गया फिर भी खिला रहे हैं, फिर 60 हो गया फिर भी खिला रहे हैं, फिर 120 हो गया फिर 180 हो गया। 180 का मतलब क्या है? फ्लैट। वो लेट रहा है ऐसा, पूरा लेट गया कृष्ण भगवान, फिर भी उसको भी खिला रहे, खाओ खाओ बोल रहे, एक बाकी रह गया अभी खाओ। इतना खाते हैं, इतना खिलाते, इतना खिलाते हैं, सब लोग सो जाते हैं, सो टायर्ड, तो हैवी, सब सो जाते हैं। और देखते हैं फिर बराबर से कुछ यहाँ वहाँ हिलाते वगैरह, थोड़ा नींद तो अभी तक दम गहरे नींद में सब लोग सो जाते हैं। तो सारी सखियाँ आती हैं और कृष्ण का सारा श्रृंगार उतार लेती हैं, कंप्लीट एवरीथिंग टॉप टू बॉटम। यहाँ पर जो लगा हुआ है ना सोने की साकल से मोरपंख लगा हुआ है, कानों में कुंडल लगे हुए हैं, यहाँ पर एक मणि लगा हुआ है जो गजराज ने दिया था, यहाँ पर मणि लगा हुआ है, सब जगह मणि लगे हुए हैं, सब कुछ उठा देते हैं, पूरा कंठमाला उतार देते हैं, बाजू बंद, कलाई बंद, अंगूठियाँ, हाँ नीचे कमर बंद, कमर कांचनी, जितने भी घुंघरू सब उतार देते हैं कम्प्लीटली, खाली पीताम्बर छोड़ देते बस, सब बांसुरी सब लोग सब कुछ ले लेते हैं और सब लेके चले जाते हैं। बोला अच्छा सबक सिखाएंगे, भाई देखते क्या होता है। बहुत घंटे के बाद में ये सब लोगों का फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन गेट्स ओवर, फिर उनको थोड़ी जाग आती है, देखते क्या हो रहा है इधर, देखता अरे क्या है, नथिंग इज देयर, सारे अलंकार गायब। तो सोचते हैं तो पता चलता है भगवान तो भगवान है, तो राधा रानी के आइडिया है सब, ये गोपियों ने मिलकर उसको सफल किया है, कोई बात नहीं देख लेंगे उसको क्या है। घर लौट के जाते हैं, मैया बोलते हैं अरे ये क्या है तेरा, इतना श्रृंगार किया सुबह तेरा, सब कुछ छोड़ के आया किधर। वो क्या करती है मैया मालूम है, वो घुंघरू को ना 3-4 गुना कसकस के बांधती है और 3-3 घुंघरू बांधती है एक एक पैर को, क्योंकि क्या है ना जब ये नाचते हैं ना इतना जोर नाचते हैं कि घुंघरू पैर का उड़ता है 2-2 मील कहीं वन में जाके गिरता है, तो मिलता ही नहीं है वो, तो फिर वो 3-3 बार कस के बांधते हैं। बोले तुमको मैंने 3-3 बार कस के बांध के आज वो भी तीनों घुमा घूम करके लेके आए, तीनों दोनों पाँव के 6-6 घुंघरू घूम करके लेके आए, कोई अलंकार नहीं ना बांसुरी ना कुछ, किधर गया किधर सब कुछ। बोलता मैया बाद में बताऊंगा आपको सब कुछ, ये बड़ी रहस्य की बात है, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन चिंता मत करना सब मिल जाएगा आपको वापस। फिर अगले दिन में सुबह उठते हैं और श्रृंगार होता है उनका, लेकिन अचानक गायब हो जाते हैं, और गायब हो जाते हैं वो, फिर नंदगांव में देखते हैं किधर गया कृष्ण मालूम नहीं। उधर बरसाने में एक सखी आती है, बड़ा घूंघट ओढ़ के लंबा ऐसा, वो ब्रिज में ऐसा रिवाज है ना कि जितना लंबा घूंघट उतनी नई दुल्हन, समझा आपको, कल शादी हो गई तो और लॉन्गेस्ट वेल इधर तक, फिर जैसे ही वो पुरानी हो जाएगी वैसे उसका घूंघट भी ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो ये तो बहुत लंबे वाले घूंघट लगा के आई है, बहुत श्रृंगार अच्छा किया, लेकिन चेहरा पूरा ढका हुआ है, और क्या कर रही है गोपी, कन्हैया ऐसे बोल के बेहोश हो रही। अभी वो तो अद्भुत बात है, ये सब लोग कन्हैया को पुकारते हैं, बेहोश नहीं होता है। तो जैसे ही ये पहली बार किसी सखी को देखती है तो कन्हैया करके पुकारते हैं, बेहोश हो जाती है, तो तुरंत 4-5 सखी इकट्ठा होती है, अरे क्या हो गया, तुरंत हवा देती है उनको, जगा करती है। तो फिर उसको देख के फिर आगे चलती है कुछ और, बोले कहाँ से आई है, बोले नंदगांव से आ रही हूँ। बोले नहीं नहीं ब्याई हो क्या, हाँ दूर गांव से नंदगांव में ब्याई हूँ, और ऐसे बोलते बोलते वापस श्याम सुंदर बोलती है और फिर गिर जाती है। तो और सारी सखियाँ इकट्ठा होती है, अरे क्या प्रेम है इसका, नाम लेते हैं बेहोश हो रही है, इतना प्रेम, हमारे अंदर इतना किसी को प्रेम नहीं है। तो बड़े मतलब गोपियों के अंदर ना एक विशेष बात है, वो लोग किसी का द्वेष नहीं करते हैं, किसी का एनवी नहीं करते हैं, असूया नहीं रखते हैं। अभी हमारे अंदर कोई अच्छा भक्त बना तो हम लोग उसका एनवी चालू कर देते हैं कि मेरे से आगे चला गया, मैंने भक्त बनाया अभी सन्यासी बन गया, वो पता है क्या, मैंने उसको डिवोटी बनाया था, मेरे 6 साल बन के बाद में आया था वो, अभी सन्यासी बन के अभी बहुत अच्छा तरह से प्रचार करता है, लेकिन मैं तो मुझे कोई मान नहीं देता है, खुद अनुरोध करते सब लोग, ऐसा हम लोग सोचते हैं मन में, लेकिन गोपियाँ ऐसी नहीं है। जो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे देखता है उसको वो सम्मान करते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हो, दे बिकम इम्प्रेस्ड, रियली ओवरवेल्ड, तो इसलिए वो सब इकट्ठा होकर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह क्या प्रेम है कृष्ण के बारे में। ऐसे करते करते 100,000,000 गोपियाँ इकट्ठा होती है, वो आगे आगे बढ़ रही है श्री जी के घर की ओर, और रास्ते में 50 बार गिर जाती है वो, अलग अलग नाम पुकारती है, गोविंद कहती है बेहोश हो जाती है, गोपाल पुकारती है बेहोश हो जाती है। अभी तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर बार जब बेहोश हो जाती है तो अधिक देर तक बेहोश रहती है, नेक्स्ट टाइम मोर टाइम शी इज अनकॉन्शियस। अभी गोपाल पुकार के बेहोश हो गए तो 5 मिनट में उठ गई थी, अभी गोविंद को पुकार के बेहोश हो गए तो 15 मिनट, फिर उसके बाद में 1 घंटा, ऐसे करते करते उसका जो विरह जो है वो बढ़ रहा है, और सब लोग और आश्चर्यचकित हो रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और फाइनली वो लोग श्री जी के महल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तब तक तो लाखों गोपियां उसको संभाल संभाल के लेके आ रही है, पकड़ पकड़ के, पता नहीं कब गिरेगी बेचारी, और फाइनली श्री जी के दरबार के गेट पर कन्हैया कह के गिर जाते धाड़ करके, सारी गोपियां उसको हवा दे रहे, पानी दे रहे, पानी दे रहे, उठ ही नहीं रहे। इस बार तो कई घंटे बीत जाते हैं, कोई उठने का चांस नहीं है, कोई लक्षण नहीं है कि अभी उठेगी, कुछ कहेगी, अगली कुछ बात करेगी, अभी बहुत देर तक समस्या है, बेहोश पड़ी हुई है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, नाक के पास रुई लगा रहे हैं वो भी नहीं हिल रही है, शायद प्राण त्याग दिए होंगे, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो ललिता विशाखा फिर कुछ सखियों को लगा दिया उसको हवा देने के लिए, और मीटिंग में बैठ गए, क्या करना है अभी, कुछ करना चाहिए, इतनी सुंदर भक्त, इतनी सुंदर गोपी का ध्यान हो जाएगा तो हमारा ब्रज को कलंक लग जाएगा, हमको संग चाहिए इस भक्त का। तो ललिता देवी तो हमेशा हर समस्या में कुछ ना कुछ समाधान निकालते हैं, जैसे वहाँ पर सुबल जी बैठे हुए हैं कृष्ण के साथ, वैसे ललिता जी यहाँ पर हैं, तो कहते हैं अरे आइडिया, याद है ना हमने परसों ही वो सब वस्त्र चुराए थे, अलंकार चुराए थे, क्यों ना हम ये सारे चुराए हुए वस्त्र जो है, अलंकार है, वो कृष्ण राधा रानी को पहनाएंगे, हम लोग राधा रानी को ब्लू पेंट भी कर देंगे, उसको मोर पंख लगाएंगे, धोती पीताम्बर सब कुछ पहना के, अलंकार पहना के उसको कृष्ण बनाकर यहाँ पर लाएंगे उसको, और सखी को बोलेंगे हे सखी देखो कन्हैया जी आए हैं, देखो श्याम सुंदर आए हैं, अभी बेहोश होने का कुछ काम नहीं है, अभी तुम्हारे प्रियतम जो है तुम्हारे सामने खड़े हैं, ऐसे बोलेंगे तो फिर वो शांत हो जाएगी, उसका विरह शांत हो जाएगा, फिर वो जीवित हो जाएगी। तो फिर कुछ सखियों को वहाँ लगाते हैं, वो बिल्कुल होश में नहीं आ रही है, और ये सारी सखियाँ अंदर भागती है, और जहाँ पर वो छुपा के रखा है पूरा श्रृंगार जो है, वो पूरा श्रृंगार एकदम डिटेल में राधा रानी को पहनाते हैं, पीताम्बर पहनाते हैं, मोरपंख पहनाते हैं, बांसुरी देते हैं, और पूरा श्रृंगार करके उसको राधा रानी को सब पहले बताते हैं क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, राधा रानी मान जाती है, फिर श्रृंगार करके राधा रानी को गेट पर लेके आते हैं और कहते हैं राधा अभी तुम कृष्ण के जैसे खड़े हो जाना, कैसे खड़े रहते हो, त्रिभंग अवस्था में, एक गर्दन एक जगह मुड़ी हुई है, एक जगह कमर मुड़ी हुई है, एक जगह पैर एक मुड़ा हुआ है, और हाथ में बांसुरी है दाहिनी ओर, हाँ ध्यान कर रहे सब लोग ना, कृष्ण भगवान खड़े हैं दाहिनी ओर बांसुरी पकड़े हुए हैं, हाँ एक जगह गर्दन झुका हुआ है, कमर झुकी हुई है, एक जगह पैर मुड़ा हुआ है, और वो बांसुरी बजाने लगती है। अभी आपको पता होगा शायद भगवान को बांसुरी किसने सिखाई, अरे भगवान को बांसुरी राधा रानी ने सिखाई, जमुना किनारे बैठकर भगवान को राधा रानी ने बांसुरी बजाना सिखाया। सब लोग तो उसको समझते हैं कि ग्रेट ग्रेट फ्लूट प्लेयर, लेकिन उनकी गुरु तो राधा रानी है, सब लोग तो उनको नटराज बोलते हैं, लेकिन उनको नाच करना किसने सिखाया, वो जमुना किनारे में रोज क्लास चलता था शाम को 4 से 6 और उसमें ऐसा होता था कि ये तो बहुत भगवान जो है ना बहुत होशियार है, वो सांदीपनि के आश्रम में गए ना तो 12 साल की विद्या 1 साल में सीख गए, वो मालूम है आपको 1 साल में 18 विद्या जो 12 साल लगते सीखने के, नॉर्मली नॉर्मल करिकुलम 12 ईयर्स, 1 साल में सारी विद्या सीख गए वो, और सांदीपनि को समझ में आ रहा था कि मैं केवल एक रिचुअल कर रहा हूँ, ये तो सब कुछ जानते हैं, लीला कर रहे हैं, सब जानते थे वो। वो कृष्ण भगवान नाचने में भी कुशल ही थे, लेकिन अगर राधा रानी ने कुछ कदम सिखाए डांस के और तुरंत सीख लिया तो क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा, तो संघ कैसे मिलेगा। तो ये जानबूझ के जो कदम रॉन्ग डालते थे, और भोली भाली राधा रानी बोले तुम कैसे हो श्याम सुंदर जी, ऐसे डालो कदम, ऐसे नृत्य होता है, ये ताल होता है उसका, फिर सिखा रही है, फिर वो गलत डाल रहे हैं, और फिर वो सिखा रही है, फिर वो गलत डाल रही है। बहुत देर के बाद उसको समझ में आता है कि ये उल्लू बना रहे हैं। तब वो मान करके चली जाती थी रूट कर, समझ में आया ना आपको। तो वो कृष्ण भगवान जो है अभी बने बनकर राधा रानी खड़ी है, और ये मुरली बजाती है, तो मुरली की आवाज सुनकर जो बेहोश गोपी पड़ी है ना, वो पूरा जंप मार के उठती है और अपना पल्लू ऐसे फेंक देती है, पकड़ा के ना तुमको राइट हैंड, हाँ क्या अपने आप को वो होशियार समझते हो सब लोग, वो कौन थी श्यामा गोपी, कौन थी वो कृष्ण ही थे वो, जो श्यामा गोपी बनकर बड़ा घूंघट मार कर आए थे वहां पर, और तब तक घूंघट नहीं उठाया था। जैसे ही मुरली बजी, देखा कि अपना शिकार सामने आ गया है, पूरा जंप लगा के उड़े और सब गोपी को चकित कर दिया उन्होंने, और पूरे श्रृंगार के साथ चुराए हुए राधा रानी खड़ी है, बोले उतारो उतारो तुरंत उतारो, तुम लोग गोपियां अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती हो। मैंने एक बात बीच में आपको जानबूझ के नहीं बताई, ताकि रहस्य भेद पहले ही नहीं करना चाहिए ना कथा में। जब वो कृष्ण चले गए तो अचानक एक गोपी आ गई उनके सामने यशोदा मैया के साथ, और पैर छुआ उन्होंने, तो यशोदा ने कहा कि अरे कुछ नई नई ब्याही हो क्या, कभी देखा नहीं तुमको। तो बोले हाँ मैया, नई नई ब्याही हूँ करके पल्लू उठा के देखते है तो क्या है, श्याम सुंदर खुद। तो बोले अरे ये क्या आज लीला है तेरी। बोले बताऊंगा, वो गहने चुराए खत्म हो गए ना गहने, वो वापस लाने का प्लान है आज का, और फिर गंगा डोड़ के फिर चले जाते ऐसे। अभी इतनी सुंदर लीला चल रही है, अगर कोई राक्षस आ गया तो कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ऐसे भगवान ने गोपियों को इस तरह से सबक सिखाया। तो उसके पहले राधा रानी बहुत इच्छा करती थी कि कृष्ण का मिलन हो जाए, तो कोई साधु उनको उपदेश करता है कि आप वृंदा देवी की आराधना करो, तो वृंदा देवी की आराधना करती हो, वृंदा देवी दर्शन देती है तो उनकी सखी हो, लेकिन लीला में वृंदा देवी दर्शन देती है, और राधा रानी को कहती है कि बहुत जल्दी तुम्हारे प्रियतम से मुलाकात हो जाएगी। तो वृंदा देवी चली जाती है, उतने में एक सुंदर गोपी आती है, बहुत सुंदर गोपी, और वो सीधे सखियों को पूछते पूछते राधा रानी के महल में पहुंच जाती है, और कहती है कि, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है उसको देखकर, बोले कितनी सुंदर हो तुम, कितने सुंदर हो, जैसे कि मेरे श्याम सुंदर हैं वैसे ही आप लग रही हो, कहाँ की हो तुम। कहते हैं मैं नंदगांव की हूँ, नई नई शादी हुई है, मैं तुमको तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हें मिलने को आ रही थी। बोले अच्छा, लेकिन मुझे एक कंप्लेंट है आपके लिए, कि मुझे जब मैं आ रही थी तो मुझे वो श्याम सुंदर मिल गया, बड़ा क्या कहते हैं अनकंसर्न्ड गंवार आदमी है वो, मैं अभी भी शादी हुई मेरी तो मेरा हाथ में हाथ पकड़ लिया रास्ते में, मैं कितना कह रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, तो हाथ पकड़ा फिर हाथ मरोड़ा मेरा उसने, और पास में लिया मेरे मुझे, और क्या क्या बताया मुझे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो बहुत गंदा लड़का है, बहुत शरारती है। तो राधा रानी को बहुत बड़ा गुस्सा आया उसको सुनकर, तो बहुत सारे लांछन दिए उसने राधा कृष्ण को, हर एक लांछन को राधा रानी ने काटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम उसको पापी कहते हो, अरे वो रोज लाखों गायों के चरणों से उठी हुई रज से स्नान करता हुआ चलता है, और रोज आने के बाद गायों के बछड़ों के खूर के बीच में जो रज अटकी हुई है उसको निकाल के उसका तिलक करता है वो। आप लोगों को पता होना चाहिए, एक तो है ब्रज रज जो बहुत महान है, एक ब्रज का रज का कर्ण जो है ना, आप सारे वैकुंठ का ऐश्वर्य भी लाओगे तो यहाँ के ब्रज का रज का एक कर्ण खरीद नहीं सकते हैं, वो अपने आप में इतना महान है। हर एक रज के कर्ण के अंदर एक प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है, जो इस रज का आश्रय लेता है उस प्रेम के रहस्य को प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात है, वही रज जब गाय के बछड़े के खुर के अंदर अटक जाती है ना, उसमें गैप होता है बीच में, वो जो रज है ना उसको ब्रजवासी बहुत ज़्यादा मानते हैं। उसको गाय जब चर के आती है, उसको गाय को सुलाते हैं, उसके पैर गोद में लेते हैं और उसके खुर के बीच में जो रज अटकी हुई है उसको इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, और हर रोज सुबह उठकर उसका तिलक करते हैं। मुझे भी ब्रजवासियों ने अपने घर के गाय के बछड़े के रज का, खुर का रज निकाल के मुझे डिब्बी में भेंट दिया हुआ है, मेरे घर पे रखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि वो हर रोज ऐसे दिव्य कामधेनु गायों के खुर से उड़ी हुई धूल का कि तिलक करते हैं, और निकाल निकाल के भी तिलक करते हैं, और तुम उसको पापी कहते हो? गाय के रज के चरणों का रज से सारे पाप मिट जाते हैं। उसने गिरिराज को उठाया है, राक्षसों का वध किया है, वो नंद बाबा का बेटा है, ऐसा करके बहुत उसको काट देते हैं। तो जैसे वो बोलते जा रही है इससे, वैसे योग ये इसका नाम गोप देवी है, जो गोपी आ रही है, और गोप देवी के भी भाव ऐसे उमड़ रहे हैं कृष्ण के बारे में गौरव सुनते हुए, और जानबूझकर कृष्ण को लांछन दे रही है, और राधा रानी और व्याकुल होकर और विवल होकर उसको उत्तर दे रही है। तो बाद में वो कहती है, तू चाहे कितना चाहे अच्छा बोल दे तेरे प्रीतम के लिए, लेकिन मैं तो उसका खराब रूप ही देख के आ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, वो ब्रज के लिए एक लांछन है, ब्रज के लिए एक क्या कहते हैं डाग है ब्रज के लिए। तो राधा रानी और गुस्सा करती है उसके ऊपर। उतने में वो कहती है, तुम इतना मेरे को बात काट रही हो, मैं सत्य बता रही हूँ मेरे साथ क्या क्या व्यवहार हुआ, और तुम उसका गौरव किए जाती हो। चलो अगर तुम्हारा प्रेम उसके ऊपर सत्य है, अगर सही है, वास्तव में है, तो देखती हूँ कि अभी तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रियतम प्रकट होना चाहिए, तब मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारा जो कहना है वो सत्य है, तुम्हारा प्रेम भी सत्य है, और तुम जो कह रहे हो वो भी सत्य है। तो राधा रानी कहती, हाँ मैं अभी ध्यान लगाती हूँ, और देखो मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो राधा रानी वो आंख बंद कर लेती है और गोप देवी गायब हो जाती है, अपना तुरंत श्रृंगार उतारती है और कृष्ण भगवान के सामने खड़े जाती है। तो गोप देवी कृष्ण ही थे, गोपी का श्रृंगार करके आए थे राधा रानी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए। और इन्होंने ही फिर जब उनको ही धारण गया कि उनको मन में ऐसा विचार आया कि अभी मैं तो ये गोप देवी का रूप ज्यादा देर अपने आप में बना नहीं सकता हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दिस फॉर्म ऑफ गोप देवी, बेटर मेरा पोल खुलने के पहले मैं कुछ ट्रिक करूँ ताकि मेरा ये रहस्य रहस्य रह जाएगा। इसलिए उसकी आँख बंद करवाई है ना, वो ध्यान में बैठ गए ना आँख बंद करके, तब ये तुरंत गए और तुरंत फिर कृष्ण प्रकट हो गए। तो राधा रानी बड़ी खुश हो गई, तो उन्होंने कहा, अरे जब मैं आ रहा था यहाँ पर एक कोई विषैली नाग जैसी नागिन जैसी औरत यहाँ से जा रही थी, मेरे बारे में बुरा भला बोलते ही जा रही थी, तुम ऐसे विषैली नागिनों से संग मत करना, ऐसा बताते उसको। तो इस तरह से ये जो बरसाना है वहाँ पर राधा रानी के बिना कृष्ण रह सकते नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बना के वहाँ पर आते रहते हैं हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो आपने सुना होगा ना हल्दी लगाने का पास टाइम, जो राधा रानी को वरदान मिला था दुर्वासा मुनि से कि इसके हाथ से, समय है क्या अपने पास? वो लीला ऐसी है कि एक दिन राधा रानी, वो बचपन में हम लोग खेलते हैं ना ऐसा, हम लोग सब लोगों ने खिलाया बचपन में, घर घर बोलते हैं उसको, घर घर खेल, मतलब कोई लड़का पिता बन जाता है, कोई लड़की माता बन जाती है, कोई बच्चे बन जाते हैं, और वो खाना बनाते हैं, फिर खिलाते हैं और नहलाते हैं, सब कुछ खेल खेल में बचपन में हम लोग करते थे। वैसे राधा रानी एक दिन ब्रज रज में घर घर खेल रहे थे, तो कोई माता पिता बने थे, कोई बच्चे बने थे, और राधा रानी सबके लिए भोजन बना रही थी, और सब लोग खा रहे थे, लेकिन भोजन सब ब्रज का बन रहा था, ब्रज रज का, चूल्हा भी ब्रज रज का, रोटी भी ब्रज रज की, खीर भी ब्रज रज की, सब्जी भी ब्रज रज की, चावल ब्रज रज का, सब एवरी आइटम मेड ऑफ ब्रज रज, मतलब आप देखेंगे तो आपको सब रज ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन खाने के लिए इधर कोई चपाती भी बनी हुई, कोई सब्जी बनी हुई, कोई खीर बनी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लोग बहुत मग्न होकर खेलते थे, बहुत मग्न होकर राधा रानी बना रही थी, और सब लोग खा भी रहे थे उसको। उतने में दुर्वासा मुनि आते हैं वहां से, तो कुछ सखियां वहां पर डोल रही थी, तो दुर्वासा मुनि को देखते हैं, बोले महाराज जी आइए आइए, थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। तो अभी वो बहुत मासूम लड़की है, मतलब वो क्या ऐसा मजाक नहीं उड़ा रही, वो तो अपने खेल में एकाग्र होकर उसको ब्रज रज नहीं मान के नहीं खा रही है, वो तो रोटी समझ के खा रहे, आनंद ले रहे उसका उल्टा। तो वे साधु आया तो उसको भी, महाराज आइए आप भी लीजिए, दुर्वासा तो दुर्वासा है, उनको तो बहुत क्रोध आ गया, वो देख रहे हैं कि मट्टी का खाना बना रही है, मट्टी मट्टी करके खिला रहे हैं और मुझे वो मट्टी खाने को बुला रही है, क्या समझते अपने आप को, भस्म कर दूंगा। तो वो डर जाती है, भाग भाग के राजारानी को रहते हैं, महाराज श्री जी देखो दुर्वासा मुनि आए, बड़े क्रोध कर रहे हैं और भस्म करने का शाप दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो भाग भाग के वो आती श्री जी के पास, तो श्री जी बड़ी मधुर भाषिणी है, सम्मोहनी भाषिणी, वो कहते महाराज जी इतना क्यों क्रोध कर रहे हो, वो जला जला वलाने की बात कर रहे हो, भस्म करोगे बात कर रहे हो, थोड़ी खीर तो खा लो, बाद में देखा जाएगा भस्म करना किसको है किसको नहीं करना है। तो वो बात से वो एकदम मोहित हो जाते हैं और इनको एक भगोना में एक दोना में उनको खीर देते हैं, बोले खा लो महाराज बहुत बढ़िया नई नई फ्रेश बनी हुई है। तो महाराज जी खाने लगते हैं उसको, और जब खाते हैं तो उनको दिव्य खीर खाने का आनंद होता है, इतना दिव्य आनंद होता है कि उसके आंखों से आंसू आते हैं, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना पेट में इतना दिव्य अनुभव करते हैं, खा तो मट्टी रहे लेकिन अंदर अनुभव हो रहा है कि खीर का अनुभव हो रहा है, बड़े प्रसन्न हो जाते हो, दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, लाली तुम कितनी महान हो, तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन खाएगा, पहले तो जो भी बनेगा तुम्हारे हाथ से वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, और जो भी भाग्यवान तुम्हारे हाथ से खाएगा वो सब रोगों से मुक्त हो जाएगा, और जो भी खाएगा वो हर चीज में विजयी रहेगा हमेशा, ही विल ऑलवेज विक्टोरियस। सब लोग खुश हो गए, कहाँ पर भस्म होने की बात हो रही थी, कहाँ पर वरदान मिल गया हमको। तो ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि राजा रानी को वरदान मिला है, तो वो बात घूमते घूमते नंदगांव पहुँच गई, यशोदा के कान पे आई, यशोदा भी सोच रही है कि मुझे ऐसे कोई भोजन बनाने वाले चाहिए जो सब स्वादिष्ट हो, अमृत जैसा हो, रोग से मुक्त करने वाला हो, विजयी करने वाला हो। तो बहुत खुश हो गई, तो ये तो परफेक्ट कुक है मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए। तो एक बड़ा उत्सव हुआ, उसकी भी एक लंबी कहानी है, वो उत्सव में बहाना करके यशोदा मैया पहुँचती है वृषभानु महल भानुगढ़ पे, और उस उत्सव में भी राधा रानी ऐसे सैकड़ों चूल्हे बनाए हुए एक साथ में, हाँ सैकड़ों सखियाँ साथ में असिस्ट कर रही है और अकेले ये मैनेज कर रही है सबके आइटम्स, और बड़ी कुशलता से उसको सबको ऑर्गेनाइज करके नियोजन करके उसके व्यंजन बना रही है, पूरा भोजन इतने हजार लोगों का भोजन बन रहा है, वो अकेले राधा रानी के निर्देश में सखियाँ बना रही है। तो और जो सुना था वो सुनकर सुना था पहले अभी देखकर और भाव उसका बढ़ता है, और कीर्ति मैया को बाजू में लेकर बोलती है, कीर्ति मेरी एक इच्छा है पूरी करोगे क्या, ये तुम्हारे राधा रानी को नंदगांव भेजा करो हमारे कन्हैया के लिए भोजन बनाने के लिए। तो कीर्ति मैया बड़ी खुश हो जाती है, वो बोलती हाँ ठीक है राजी है। तो इस महोत्सव का लाभ लेकर सुधा मैया अपना काम कर लेती है, और अगले दिन से राधा रानी जो है रोज़ नंदगांव जाती है सखियों को लेकर। तो यशोदा माई अपने पावन सरोवर पे, मतलब जो नंद सरोवर था उस समय, उस पर एक कुआं खोदती है मीठे पानी का, और उसमें वहाँ पर रसोई का इंतजाम करती है, और राधा रानी रोज वहाँ पर भोजन बनाती है। उसमें एक विशेष प्रकार का भोग बनता है, उसका नाम है बंटा भोग। आपने सुना है कभी बंटा भोग? बंटा भोग है ना, वो बेसन और रवा का आटे का मिक्स, इतना बड़ा हाथ में रख कितना है, इतना बड़ा लड्डू बनता है उसका। और कभी कभी जब राधा रानी रोज जा नहीं पाती थी तो वो एक एक कमरा भर के लड्डू बना के आती थी। हम लोग ऐसा एक डब्बा भर के बनाते ना ऐसा स्टॉक में, तो समझो ये कमरा आप बनाए ना यहाँ पर, ये कमरा भर के लड्डू, लड्डू कैसा देखेगा आपको, ऐसे कमरे भर के लड्डू बना के ले आती थी वो, उसको कहते हैं बंटा भोग। और बंटा भोग का विशेष महत्व ऐसा है कि बंटा भोग जो है ना वो 24 आवर्स लगता है भगवान को, मतलब ऐसा कुछ टाइम नहीं उसका, शाम को देना है सुबह देना है, हर एक भोग में वो बंटा भोग चाहिए। और बंटा भोग पर तुलसी लगती नहीं है, क्योंकि नींद रात को नींद से उठे समझो ऐसा आ हा करते तो लड्डू होना चाहिए, ये भाव से बनाते हैं उसको। और वो जब आज ही बनता है बंटा भोग, तो राधा रानी के भाव से बनाते हैं उसको कि राधा रानी बना रही है, और उसका विशेष स्वाद होता है बहुत। नंदगांव के गोसाई बनाते हैं, और वो जगह का इतना महात्म्य है कि वही गोस्वामी जो रोज के पैमाने पर अपनी अपनी सेवा में ये बंटा भोग बनाते हैं, वही गोस्वामी हमारे घर पर आए थे कोई इलाज करने के लिए अपने दादाजी का। तो उस समय हमने कहा कि वो आप बंटा भोग बनवाओ ना, आप लोग अपने हाथ से इतना बनाते हो। तो उसी गोस्वामी ने उसी प्रकार का मेजरमेंट लेके उन्हीं प्रकार का स्टाइल से प्रकृति से प्रक्रिया से उसको मेरे घर पे बनाया, फिर भी बहुत स्वादिष्ट बना वो, लेकिन वो स्वाद नहीं आया जो नंदगांव में बनता है, इतना विशेष है वो बंटा भोग। तो रोज आ रही है, रोज भोजन बना रही है। फिर भोजन बनाने के क्या होता है, भोजन बनाने के बाद कृष्ण को बुलाते हैं ना और भोजन खिलाते हैं, तो ये खिड़की से छुप छुप कर देखती है कैसे बन रहा है, कैसे खा रहे हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो चालाक है, वो जानते हैं कि देख रही है कि मैं भोजन कर रहा हूँ, वो देख रही है, उसको ये अपेक्षा है कि मैं तारीफ करूँ, तो जानबूझ के वो देख रही है। तो बोलते ये क्या खाना बनाया है, ये बल्लू तू खा ले, मैं नहीं खा सकता इसको, इसमें कुछ स्वाद नहीं है, कुछ है ही नहीं। और जैसे वो नज़र उजर हो गई तुरंत भक भक खा लेते हैं। उसके बाद में धनिष्ठा जो है, वो धनिष्ठा वो उनका महाप्रसाद लेकर आती है और राजा रानी फिर भोजन करती है और फिर शाम को लौट के जाते हैं। ऐसा रोज का है, कभी कभी जाते कभी नहीं जाते। लेकिन रोज जब राधा रानी इतना बढ़िया व्यंजन बना रही है, क्योंकि यशोदा भी खा रहे हैं ना उसको, इतना स्वादिष्ट भोजन बना रही है। अभी ध्यायतो विषया पुंसा, क्या आगे बताया, हाँ अपना जो मन की प्रिय वस्तु है उसका रोज संग किया जाए तो क्या होता है, अटैचमेंट, आसक्ति बन जाती ना। अभी वही वस्तु जो है रोज घर पे आके मेरे कन्हैया के लिए भोजन बना रही है, इतना प्यार उमड़ रहा है रोज, ऐसे लहरें उमड़ रही है, लेकिन वो काबू में रख रही है उसको। लेकिन एक दिन वो काबू में नहीं रखेगी उसको, ऐसा राधा रानी को गले लगाया उसने प्रेम से, इतना प्रेम से आलिंगन दिया कि तू कितनी सुंदर है, तू कितनी गुणवान है, कितनी शीलवान है, गले लगाया, आंसू बहाए, आंसू से सिंचन कराया उसका पूरा, और तुरंत रसोई से हल्दी लिया और उसको हाथों को मल दिया, ये भाव से कि अब बस हो गया, अभी तुम मेरी बहू बन जा। राधा रानी भी बहुत संकोच करती है, बहुत शर्माती है, बहुत मन ही मन में इतनी खुश हो जाती है वो कि आज यशोदा मैया ने मेरे दिल की बात पूरी कर ली अपने आप ही। ललिता विशाखा सब लोग खुश हो जाते हैं, सो हैप्पी, और फिर उसमें से निकलते हैं फिर जाने के लिए, और झूमते झूमते आनंद की लहरों में झूमते झूमते आ रहे हैं। लेकिन आनंद खत्म हो जाता है जब बरसाने की सीमा में प्रवेश करते हैं। क्यों, तब होश आता है ना, अरे मैया पूछेगी अच्छा संस्कार है तुम्हारे, अकेले जाके क्या कहते हैं उसको, वाग निश्चय करके आ रही हो, यही संस्कार है हमारा क्या, खुद लड़की जाकर, आज के जमाने में सब लोग वही करते हैं, शादी करके ही आते हैं, ये तो एंगेजमेंट करके आ रही है। तो फिर सब लोग होश में आ गए, एकदम रोने लगे राधा रानी, अरे मैया क्या बोलेगी, बाबा क्या बोलेंगे, इतना डांटेंगे, कितना मैंने गलत काम किया आज। तो फिर भी ललिता क्या करना चाहिए बताओ कुछ, तो ललिता कहते देखो ये हमारे पिताजी का कुंड है, बानू सरोवर है, यहाँ रोज स्नान करते हैं, यहाँ धो लो हाथ तुम, हम किसी को नहीं बताएंगे, हमारे अंदर राज रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, आप अच्छी तरह हाथ धो लेना, जैसे हाथ धोती है वो कुंड पीला हो जाता है और ये चले जाते हैं ऊपर। अभी अगले दिन सुबह ब्रजवासी लोग कुंड पे आते हैं अपना अपना प्रातः क्रिया करने के लिए, अरे तो कुंड पीला हो गया, कल तो स्वच्छ था पूरा, पारदर्शी कुंड था, आज पीला कैसे हो गया। वो बहुत चतुर होते हैं ब्रजवासी लोग, भक्त है ना भगवान के, बहुत चतुर होते हैं वो, मन ही मन अनेक कल्पनाओं को फूल की तरह एकत्र करके एक माला बना देते हैं, एक एक कल्पना एक एक फूल, क्या कल्पना, वहाँ गई होगी एक कल्पना, जाती तो है ना मालूम है, यशोदा को भाव भर गया होगा, एकदम भाव विभोर हो गई होगी, दूसरा फूल, तीसरा फूल गले लगा लिया होगा, चौथा फूल बहुत रोई होगी, फिर भाव और बढ़ गया होगा, फिर हल्दी लगा दिया होगा, फिर हल्दी लगाने के बाद राधा रानी खुश हो गई होगी, फिर खुशी से आती होगी, फिर बरसाना में आते ही होश उड़ गए होंगे, फिर सखियों ने सलाह दी होगी कि हाँ हाथ धो लो, और फिर चले गए होंगे, इसका मतलब सारे फूल जोड़ दिए तो एक अच्छी कहानी बन गई, तो एक कंक्लूड कर दिया कि राधा रानी का वाग निश्चय हो गया, यशोदा ने कर दिया, कृष्ण को उसका पति बनाने का संकल्प कर दिया, करके ये सब लोग हरि बोल। और जाते भाग के नंद अपने वृषभानु महल में, अरे कीर्ति मैया हमने सुना है तुम्हारी बेटी के लाले की सगाई हो गई, सारे कल्पना के फूल, लेकिन कल्पना नहीं, वास्तव था वो सब, है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जब प्रेम होता है ना तो सत्य का हृदय में एहसास होता है, यू फील द रियलिटी एट योर हार्ट एज अ रियलाइजेशन व्हेन यू हैव लव। क्योंकि हमारे किसी का देहांत हो गया तो उस समय गुरुजी ने उसकी बेटी को पूछा पुनः यात्रा में, हाउ इज योर फादर, इज ही ऑल राइट, लेकिन वो गुजर चुके थे वहाँ पर। तो जब हम पहुँचे उस कन्या को लेकर घर पे तो वो गुजर चुके थे, फिर सब उनका विधि हुआ सब, उसके बाद में वापस गुरुदेव को मिले तो उसने पूछा कि गुरुदेव आपको कैसे पता चला, हम तो पुणे में थे, हम पिताजी तो बॉम्बे में चले गए। उन्होंने कहा जब प्रेम होता है ना, तो जिस पर प्रेम करते हैं उनकी सारी बातों का एहसास हृदय में होता है, ऐसे उन्होंने बताया था। बहुत उत्कट बात है। तो कृति मैया को बड़ा संकोच होता है कि हमने तो कोई सगाई वगैरह नहीं की। भ्रष्मान महाराज को और संकोच होता है, अभी कन्फर्म कैसे करना है, श्री जी आ जाओ, क्या कह रहे हैं लोग सब लोग। तो वो क्या कर रही है, क्या बोलेगी बेचारी वो। बाद में कहती है कि मैया मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे ऐसे गले लगाया, रोने लगी और हाथ में हल्दी लगाया, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाई, मैं तो बहुत संकोच में आ गई थी। तभी साफ साफ बोल दिया ना जो भी कुछ हो गया। कभी भी हमको कुछ पकड़ते ना, कभी भी सच बोलना चाहिए, सच बोलने से काम आसान हो जाता है। ज़्यादा कुछ बहाना वहाना इधर उधर उल्टा सुलटा नहीं बोलना चाहिए। व्हेनेवर यू आर ट्रूथफुलनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। गलती भी किया होगा ना, सच बोल देना चाहिए, मामला वही खत्म हो जाता है। अगर आप बहाने बनाते हैं तो मामला बिगड़ जाता है बहुत। एक झूठ के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। राधा ने तुरंत जो भी है वैसा वृत्तांत बोल लेती है। और यहाँ पर गुस्सा आने के बदले में कीर्ति मैया को इतनी खुशी होती है कि मैं तो सोच रही थी कैसे बात करूं यशोदा से इस बारे में, और यशोदा मैया ने अपने आप ही कर दी ये सब बातें, कितनी खुशी की बात है। अच्छा, ये सीन यहाँ पर चल रहा है। वहां पर कुछ देर बाद यशोदा मैया को भी होश आता है ना, भाव विभोरता से वो ग्राउंड पे आ जाती है नंद भवन की, और सोचती अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया, मेरी कीर्ति दीदी क्या सोचती होगी, यही संस्कार है नंदगांव के, यही कल्चर है, हाँ किसी की बेटी को बुला लेना किसी बहाने और बहू बना देना उसको, बिना पूछे बिना कुछ सम्मति नहीं, कुछ डिस्कशन नहीं, कोई बैठक नहीं, कुछ नहीं, कोई लेन देन की बात नहीं, सीधा बना के भेज दिया, कोई रिवाज है। क्या सोचती होगी कीर्ति भैया, कीर्ति दीदी मेरी। वो हस्बैंड को बताया कि मैंने ऐसा गड़बड़ कर दिया, तो बोलती तुम कैसे करते हो ऐसे, मुझे नंद बाबा मुझे भी मेहमानों को क्या मुंह दिखाऊं मैं। बोले मैं भी ये सोच रही हूँ कि कीर्ति को क्या मुंह दिखाऊं। तो ये दुख में बैठे हुए टेंशन में यहाँ पर, और वहाँ पर फवारे फूट रहे हैं, अच्छा हो गया बहुत। तो कहते हैं नंद बाबा विश्वानु महाराज कहते हैं कि हमें कुछ देना चाहिए इस बात पर, उनके इस कार्य के ऊपर, इस कृति के ऊपर कुछ प्रतिसाद करना चाहिए कि वी अप्रूव दिस। तो विश्वानु महाराज बड़े अमीर हैं, उनके पास स्वयं श्री जी उनकी कन्या है ना, तो सारा सारा श्री ऐश्वर्य सारा उनके पास में है। ऐसे कहते हैं कि उनके पास कई भंडार थे, एक एक ज्वेल के, मतलब रत्न के अलग भंडार थे, हीरे के भंडार अलग थे, पाचू मोती माणिक ऐसे अलग अलग भंडार थे उनके। तो मोतियों का भंडार खोल दिया उन्होंने और एक बैलगाड़ी में भर दिया पूरा, एक बैलगाड़ी भर के, जब तो प्रचुर मात्रा में था, एक बैलगाड़ी भर के एक मैसेंजर को ब्राह्मण को लेकर भेज दिया उसको। ये लोग वहाँ टेंशन में बैठे हैं क्या होगा। उसमें देखते हैं कि बरसाने की ओर से एक छकड़ा आ रहा है, छकड़ा मतलब बैलगाड़ी, चमक रहे मोती उसके अंदर। तो भाग के ब्राह्मण आता है और लेटर देता है कि कीर्ति मैया और भ्रष्मानु महाराज की ओर से आपके लिए भेंट भेजी हुई है। तब वो एकदम बोलते ना जीव भांडक पड़ला, अच्छा हो गया मैंने कुछ गलत किया, फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया उसको और बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। और कन्हैया भी देख रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं। अभी इनकी और समस्या बढ़ गई, बोलते कि अरे अभी इतने कीमती मोती दिए हैं, अभी ये मोती अगर हमको भी कुछ देना चाहिए ना, उनको उन्होंने कुछ दिया है तो हमको भी रिस्पॉन्स में कुछ देना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने कीमती मोती नहीं है। तो कन्हैया भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई चिंता मत करना भैया, 100,000 मोतियों की माला बनाकर गाड़ी भरकर भेज दिया था उन्होंने। तो बड़े संभाल कर रखती है अपनी मैया उसको। शाम को जब मैया चली गई होती है तो उसमें से 100 मोतियों की माला कृष्ण चुरा लेते हैं और अपने पीछे जाकर आंगन में उसको पीछे खेत में जाकर बो देते हैं। सब तोड़ते हैं पहले, एक एक मोती बोते हैं, ब्रज ब्रज डालते हैं, उसमें दूध दही सब माखन का सिंचन करते हैं और मैया को मिलने आते हैं। मैं अगले दिन देखते, अरे 100 मालाएं गायब कैसे हो गई। तो जानते हैं कि पूरे ब्रज में तो एक ही चोर है सबसे बड़ा, उसको ही पूछते हैं। तो कन्हैया को बुलाते हैं, किधर है वो मोती सब, तुम चोरी कर दिए उसको। नहीं मैंने चोरी नहीं की है, मैं देख रहा था कि आप लोग बड़े परेशान थे, तो आपसी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने सारे मोतियों को तोड़ तोड़ कर खेत में बो दिया है। अरे उल्लू का पट्टा, अरे तुमको पता नहीं है इसमें तो धान्य बोते हैं, उसको कोई मोती की खेती नहीं होती है, धान्य बोते हैं। नहीं मैंने आपको देखा है, आपने एक धान डालते हैं तो उसका 250 धान्य होता है, मैंने देखा हुआ है, सोचा एक एक मोती का 250 मोती हो जाएंगे तो वो देने के लिए हमें इज्जत बच जाएगी अपनी। अरे कैसे तुम कन्हैया, कैसे तुम मूर्ख व्यक्ति हो, नहीं, बाबा आपको आना है, आपको देखना है, देखो खेत मोतियों से भरा हुआ है। तो और ढोर थाका मार के हंसते, क्रोध भी कर रहे हैं, हंस भी रहे, क्या करे, बाल हट्टे हैं तो जाना पड़ेगा, हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं उनको। वो जाके देखते तो क्या, पूरा खेत मोतियों से भरा है, चमक रहा है, लहरा रहा है, सब प्रकाश फैला हुआ है। तब क्रोध भी नहीं करते, हंसते भी नहीं है, दरादर बिनने लगते हैं उसको। और फिर वापस भेजते हैं उसको। तो वो जगह जो है मोती कुंड है उसका नाम, नंदगांव में है वो जगह, जहाँ पर भगवान ने मोती की खेती की थी। फिर बैलगाड़ी भर के वह जा वहाँ पहुँचता है। फिर आगे कथा आती है ऐसे कि वो मोतियों को राधा रानी ने डबारा गांव में, डबरारो गांव है, वहाँ पर मोती बोकर हीरे उपजे उन्होंने। शी ग्रू डायमंड्स फ्रॉम दोज पर्ल्स। वहाँ पर रत्न कुंड है, यहाँ पर राधा रानी ने मोती डालकर रत्न को उगाला है। तो ये जो कथा है बहुत लंबी कथा, आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर भी ये जब हाथ पीला हो गया ना, वो कुंड पीला हो गया ना, तो 2 दिन के बाद कृष्ण आए वहाँ पे। उनको तो रहा जाता है ना, वो कुछ ना कुछ बहाना करके आते रहते हैं ब्रज में। तो वो आए, दिखा तो बरसाने के बॉर्डर पे दिखा तो ये कुंड पीला कैसे हो गया, ही डिडंट नो ऑल द स्टोरी। तो वो ऐसे पूछते पूछते पूछ रहे हैं आकाश पे, ऐसे अपने आप में पूछ रहे हैं, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, करके करके वो कुंड में प्रवेश करते हैं। अभी कुंड में प्रवेश करते, पहले घुटने तक, फिर घुटने से इधर तक, फिर उधर से कमर तक, कमर से छाती तक, ऐसे करते अंदर अंदर जाते हैं। आवाज गूंज रही है, ये पीली वस्तु क्या है। और बाद में कुछ समय के बाद में वो पानी के पृष्ठभाग के ऊपर 2 हाथ और 1 मोरपंख पूरे कुंड में घूम रहा है और आवाज गूंज रही है, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। फिर वो बाहर आते हैं, जब बाहर आते हैं धीरे धीरे, तो पूरे कृष्ण जो है वो पीले रंग के हो जाते हैं। तो हमारे प्रिय परम पूज्य बरसाना महाराज कहते हैं कि ये पहली बार कृष्ण ने ब्रज में ये ऐलान कर दिया कि मैं अगले अवतार में इसी रूप में आने वाला हूँ। तो उस पीले रंग से रंग कर श्री कृष्ण पुकार रहे हैं, फिर भी पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है, क्या उसका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ये प्रश्न का उत्तर है, वो पीली वस्तु राधा रानी का प्रेम है, जो धारण करके कृष्ण भगवान भी अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इतना अद्भुत आनंद अनुभव कर रहे हैं कि एक अवतार पूरा डेडिकेट किया उन्होंने इसको समझने के लिए, क्या चीज क्या है ये, हाँ, जो उनको भी समझ में नहीं आ रही है, व्हाट इज दिस, आई वांट टू अंडरस्टैंड। एक अवतार एलोकेट कर दिया, पूरा टाइम एनर्जी स्पेस सब कुछ दे दिया उसके लिए। आई वांट टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस। तो वो जगह जो है उसमें पीली पोखर जो है उसमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। वहीं पर यहाँ पर ना वो फागुन की नवमी पर होली होती है, उसको रंगीली होली कहते हैं। तो अष्टमी के दिन वो न्योता आता है नंदगांव से, और पांडे नाम का एक व्यक्ति होता है, पांडे को भेजते हैं, वो पांडे इज अ मैसेंजर। तो वो पीली पोखर पहुँचता है और सखियों को देता है निमंत्रण कि हमारे नेता ने, हमारे नायक ने आप लोगों को होली का निमंत्रण दिया है। अच्छा, सब लोग उधर पिचकारी लेके आती हैं और पांडे को पूरा भिगा देती हैं, मतलब हमारी बम्बई की भाषा में क्या, पूरा धो डालती है उसको। सब गोपियां उसको पूरा अकेला पकड़ के चारों ओर से रंग लगा देती हैं, पूरा पूरा भिगा देती है। उतने में राधा रानी वहाँ से आती है और उसको पांडे की बड़ी दया आती है, अरे न्योता लेकर खाली आया है वो, न्योता किसी ने और नहीं भेजा है, उसको तो कल आना है, इसे क्यों तंग कर रहे हैं आप। तो सब गोपियों से बीच में छुड़ाते हैं उसको, और छुड़ा के माफ़ी मांगते हैं कि भैया पांडे माफ़ करना, हमारी गोपियाँ ऐसे ही यहाँ पर बहुत शरारती हैं। तो उसको बड़े प्रेम से वो घर ले जाती है, और घर ले जाकर उसके वस्त्र उसको नए देती है, वस्त्र उसको नहलाने का व्यवस्था करती है गर्म पानी से, उसको वस्त्र देती है, उसको अलंकार देती है, उसको बढ़िया भोजन खिलाती है, उसको पटका देती है, उसको दुपट्टा पहनाती है, और पालकी से सम्मानपूर्वक घर भेजती है उसको। राधा रानी दयालु, देखो जब कोई संकट में होता है उसको तुरंत सेवा करती है, तुरंत हेल्प करती है। और नेक्स्ट डे नंदगांव से, ये उसका वर्णन ब्रह्मवर पुराण में दिया है, नेक्स्ट डे भगवान वहाँ पर पूरे जुलूस के साथ निकलते हैं होली खेलने के लिए, पूरा श्रृंगार करके, पूरा दूल्हा बनकर, पूरा बसरी बजाते हुए निकलते हैं। और वो बारात, वो जुलूस का ऐसा वर्णन किया गया है, उसमें सारे देवता लोग भेष बदल कर शामिल हो जाते हैं, सारे देवता लोग। वो नग्न अवस्था में सुखदेव जी आ रहे हैं, पुतना भी थी उसके अंदर, पुतना वो सुखदेव को गोद में लेकर जा रही है, और 4 मुख वाले ब्रह्मा जो है वो गोप बनकर आ रहे हैं, 5 मुख वाले शिवजी भी चल रहे हैं उसके अंदर, नारद मुनि चल रहे हैं, हाँ, और सब लोग नाच रहे हैं, और उधर ब्रह्मा, बाद में ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी झगड़ा करते हैं ब्रह्मा जी से कि तुमने हमको नहीं लेके गए, खुद चले गए। जब भी ऐसा इंपॉर्टेंट उत्सव होता है खुद चले जाते हो, हमको भूल जाते हो। ऐसा ब्रह्माणी का वाद भी हुआ है ब्रह्मा जी के साथ, और सब लोग मदहोश होकर गीत गाते हुए सब ग्वाल बाल देख रहे हैं, अरे मटक मटक के चल रहा है, कौन पांच मुख वालों, कौन चार मुख वालों, हाँ सब देख रहे हैं, कौन है ये लोग, एक हमारे यहाँ जुलूस में कैसे आ रहे हैं लोग, आनंद ले रहे, सब लोग आनंद लेते रहते। फिर ये सारे जुलूस जो है वो पीले पोकर पहुंच जाती है। अभी वो होली के नेता है ना, वो पूरा यहाँ पिचकारी, यहाँ पिचकारी, पूरा ऐसा पूरा फुल्ली इक्विप्ड एकदम, ड्राई कलर वेट कलर पूरा लेके घूम रहे, और ऊपर पहुंचते हैं तो उस समय किसी कारणवश राधा रानी मान में बैठी हुई है, क्रोध क्रोध से बैठी हुई है। तो विशाखा नीचे है पीली पुकार पे, और कृष्ण भगवान उसको इशारा करते हैं, वेर इज शी, किधर है वो। तो इशारे बताती, नाराज है बहुत, ललिता जी ऊपर मना रही है उसको, तो वो ऊपर किसी को भेजती है बताने के लिए, कृष्ण आ गए होली खेलने के लिए, क्या कर रही है, रो क्यों रही है वो। तो ललिता जी बोलती है कि देखो संदेश भी आ गया है, कृष्ण नीचे आ गए दूल्हा बनकर, सब धज धज के आ रहे हैं होली खेलने के लिए, तुम मान छोड़ो अभी, श्रृंगार करके चलो। तो ये इसमें से, तो वो पिचकारी निकालते हैं और वो मारते हैं, वो पीले पोकर से दर्शन होता है श्री जी के महल का। तो वो वहां पिचकारी पहुंचती नहीं, लेकिन प्रेम का संदेश ऊपर भेज देते हैं हृदय से। तो फिर वो धक्का मारकर ललिता देवी को वो झरोखे में लाती है, मतलब खिड़की में, देखो देखो, हाँ देखो देखो कन्हैया जी आ गए। तो उसको देख के उसका थोड़ा सा मान समाप्त हो जाता है, जल्दी जल्दी श्रृंगार करके ललिता देवी उसको नीचे लेके आती है, और फिर गोपियों का और भगवान का मिलन होता है पीले पोखर के किनारे पे। और अभी वो तय करते हैं अभी होली खेलनी है, तो फिर होली का रूल्स तय करते हैं, पहले ड्राई होली खेलेंगे, फिर वेट होली खेलेंगे, फिर ऐसे खेलेंगे, फिर वैसे खेलेंगे, फिर झूला झूलेंगे, फिर होली खेलेंगे, फिर झूला के बाद में फिर होली खेलेंगे, ऐसा बहुत प्लानिंग करते हैं। तो शुरुआत में फिर ड्राई होली का तय होता है और ड्राई होली शुरू कर देते हैं। अभी ड्राई होली में गोपियाँ विजयी होने लगती हैं और कृष्ण परास्त होने लगते हैं, यू नो ना ओवर पावरिंग कैसे होता है, आपने देखा हो ना, हम लोग भी बचपन में होली खेलते थे, समबड़ी ओवर पावर टू टू थ्री साइड देन यू आर कम्प्लीटली अनएबल टू डू एनीथिंग। तो वैसे कृष्ण को सारी गोपियाँ मिलकर सूखी होली में हरा देते हैं। तो ये चालाक जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सूखी होली में हार रहे हैं तुरंत पिचकारी निकाल कर मारना आरंभ कर देते हैं। तो उनको समझ में आता है कि ये लोग ये अभी नियम तोड़ रहा है आदमी। तो ये पिचकारी जब निकाल के मारते हैं तो ये राजा रानी उसको हाथ से ऐसे हाथ पर पिचकारी लेती है, ऐसे यू अंडरस्टैंड, पिचकारी हाथ पे लेती है उसकी जो धार है उसको, लेकिन वो हाथ को लगकर वो गुलाबी रंग जो है ना उसके कुछ छींटे राधा रानी के गाल पे गिर जाती है, और वो जो कुछ छींटे गाल के ऊपर गिरे हुए हैं उसको देखकर कृष्ण इतने मोहित हो जाते हैं, पिचकारी को नीचे रखते हैं और उसको देखते रहते हैं ऐसे, इतनी सुंदर रख दी श्री जी हमारी। वो घटना को देखकर सारी गोपियां कृष्ण पर जंप करती है, उसको पकड़ के उसके हाथ मरोड़ के ऐसे पीछे उसको अरेस्ट कर लेती है, तुमने नियम क्यों तोड़ा, हमने कहा था कि होली गर्म ठंड गीली होली खेलने का समय बाद में आएगा, वे सूखी होली का हारते हो तो चालाकी करते हो, उसको दंड देना चाहिए। तो उसको पूरा ऐसा हाथ मरोड़ के अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर मुकदमा कहाँ चलता है, ललिता देवी के पास, न्यायाधीश ललिता देवी के पास मुकदमा पहुंचता है, इसका इलाज करो, न्याय बताओ इसका क्या करना चाहिए। तो ललिता देवी तय करती है कि इसको दंड दिया जाए। अभी होली का जो होता है ना दंड कैसा होता है, उसको काजल लगाते हैं रोज के सर पे, कैसे एक उंगली से ऐसे निकाल के बड़े प्रेम से लगाते हैं, होली में पांचों उंगली डुबाते हैं काजल में और ऐसे लगाते हैं और वो व्यक्ति जिसको दंड देना है उसका दुपट्टा छीन लेते हैं, उसका फेटा भी छीन लेते हैं, वो दंड का एक स्वरूप है ब्रज का। तो ये लोग उसको पकड़ के उसका दुपट्टा छीनते हैं, उसका फेटा उतार देते हैं, और कहते राजा रानी आपको इसको काजल लगाना है, पांचों उंगलियों से मुंह भर देना है इसका। तो उसको ऐसा उल्टा, आप समझ सकते हैं ना, ऐसा हाथ बांध के ऐसे पूरा लेके जाते राधा रानी के सामने, और काजल उसको देते, काजल से वो हाथ ऐसे डुबाते हैं और उसको लगाने जाते ना ऐसे, तो ये मुंह ऐसे कर देते। फिर कुछ सखियां और एम्प्लॉय की जाती है, इसके सर को पकड़े रखो, उसके मुंह को दो कान के पकड़ के ऐसे पकड़ टाइट पकड़ते हैं, राधा रानी उसको दोनों हाथ से काजल लगाते हैं, इसका पट्टा दुपट्टा छीनते हैं, सब लेते हैं, बोले जाओ अभी, फिर एक ऐसी गाली देते हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, वो दे देते हैं, अभी जाओ कहते हैं। फिर बेचारा दुखी होकर चला जाता है,
हरे कृष्णा, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं वो पीले पोखर के पास में होती है। ये सब लीलाओं को अबाधित रखने के लिए हमारे श्री जी ने कंस महारानी को उधर रखा था, इधर आने नहीं दिया था, ताकि ये सब इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं वहां पर होती रहती है। वो कहते हैं कि वो बार बार ब्रज में आते हैं, नंदगांव छोड़कर बरसाने आते हैं, ऐसे खड़े सब। तो गोपियां पूछ रहे क्यों ठाड़े हो? तो नहीं नहीं नहीं, रास्ते में वो पत्थर है ना, वो कंकड़ बीद रहा हो जरा। तो फिर नाटक करता है कि कंकड़ उठा के यहाँ डाल रहे हैं, फिर खड़ा होकर देख रहा है कहाँ से राधा रानी आ रही है, फिर नहीं दिखाई दिया तो और औरतें आ रही है मटका लेकर, क्या कर रहे हो? थोड़ा नहीं नहीं वो फूल बीन रहा हूँ, कभी फूल बीनने का बहाना कर रहे हैं, कभी कंकड़ निकालने का बहाना, कभी रोड साफ कर रहे हैं, कभी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, कभी यहाँ कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा लालायित रहते हैं, उनको रहा नहीं जाता है। और जब शिव विवाह भी उनका हुआ तो राधा रानी ने कहा कि भी घर जा में बन के रहो, इसलिए वो उधर कृष्णानु महल में उधर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो सखी वेश में रहते हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा आपको, एक पूरा लंबा चुनरी ओढ़ के रखा है उनको, तो वो हमेशा सखी भाव में रहते हैं। सखी भाव का मतलब क्या है? दास्य। सखी मतलब असिस्टेंट। वो हमेशा कृष्ण भगवान सखी भाव में बरसाने रहते हैं। बरसाने एक ऐसा अद्भुत धाम है जहाँ पर स्वयं भगवान जो है वो सखी भाव में रहते हैं। वहाँ पर शंकर जी सब जितने भी देवता आते हैं वो सखी बनकर ही वहाँ पर जाते हैं पुकारने के लिए। सब लोग टेर लगाते हैं, सुन लो टेर हमारी ओ वृष भानु दुलारी, बोलो सुन लो टेर हमारी ओ वृष भानु दुलारी, राधे 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 राधे। सब लोग नहीं पुकार रहे हैं, पुकारो राधे राधे सुन लो टेर हमारी ओ वृष भानु दुलारी, सुन लो टेर हमारी ओ वृष भानु दुलार, राधे 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 सुन लो टेर हमारी ओ वृष भानु दुलारी, जय जय श्री राधे।